प्यारे साथियों नमस्कार। आज 8 अक्टूबर 2015 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। और मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत कर रहा हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं सुशीला गुर्जर, सीकर राजस्थान से, पट्ट राम लोहिया बाड़मेर राजस्थान से, और बाड़मेर राजस्थान से ही हैं स्वरूप राम जोगेश, गोपाल पांडे जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, रोशनी नेरे जबलपुर मध्य प्रदेश से, और प्रदीप कुमार चेन्नई से। सुशीला, पट्ट राम, स्वरूप राम, गोपाल, रोशनी और प्रदीप, आप सभी नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी मेरे मुंह से ये बात निकलती है कि मैं इन नौजवान साथियों का स्वागत करता हूं, तो सच पूछे तो मेरे आंखों के सामने वो क्लास का वो दृश्य उभर कर आ जाता है जब आप बहुत जल्दी ही मेरे सामने होंगे और मैं आपके सामने होऊंगा, और अभी जिस आवाज को आप इस ऑडियो के जरिए सुन रहे हैं और आपकी जो आवाज मेरे पास एक लिखित फॉर्म में फीडबैक के रूप में ईमेल के जरिए आ रही है, वो आवाज साकार होगी। हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जरूरी मुद्दों पर जमकर बातचीत करेंगे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब क्लासेस खत्म होंगी तब आप सीधे सीधे हम एक दूसरे से मिलेंगे और आपके प्रश्नों के व्यक्तिगत रूप से उत्तर दिए जाएंगे, उन समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। डेफिनेटली फ्रेंड्स, मैं इसे बड़े एक अद्भुत अवसर के रूप में लेता हूं। इस अवसर के रूप में जब मैं आप जैसे ऊर्जा से भरे हुए और आंखों में बहुत खूबसूरत भविष्य का सपना पाले हुए नौजवान साथियों से मिलता हूं, बात करता हूं, और सच पूछिए तो आप लोगों से मिलना मेरे लिए एक तरीके से अपने उसी समय को याद करने जैसा हो जाता है जब मैं भी आप जैसा ही था, आप जैसे ही आशंकाओं और चिंताओं से घिरा रहता था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे तैयारी करें, होगा भी कि नहीं होगा। वही दुश्चिंताएं, वही डर, भय, आशंकाएं, निराशा, सब कुछ बिल्कुल वही होती हैं, और वो मुझे अपना दौर याद आ जाता है। और फिर दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं आप सबके बीच में होता हूं तो अपनी उम्र भूल चुका होता हूं, अपना पद भूल चुका होता हूं, और कितनी खुशी की बात है कि मैं फिर से आप लोगों के जैसा ही एक स्टूडेंट बन जाता हूं। और सच में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये खूबसूरत मौका उपलब्ध कराने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं, और एक बार फिर से आप लोगों के आने की प्रतीक्षा में स्वागत के अपने शब्द आप लोगों के सामने रखता हूं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी सूचना है, और वो सूचना ये है कि अभी जो 25 अक्टूबर से क्लासेस होने वाली हैं, जिसके लिए कुछ ही दिन रह गए हैं, उसमें अभी कुछ सीट्स खाली हैं। खासकर चूंकि बहुत से स्टेट्स में सिविल सर्विस के प्री के एग्जाम आ गए, मेंस के एग्जाम आ गए और दूसरे एग्जाम आ गए, उसके कारण कुछ स्टूडेंट्स ने फिलहाल आने में अपनी असमर्थता जताई है, तो इसलिए कुछ सीट्स खाली रह गई हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट इसके लिए इच्छुक हो, चाह रहा है कि इस सुनहरे अवसर को वो बहुत जल्दी अपने हाथ में पकड़ ले, इसका लाभ उठा ले, तो आप लोगों से ये आप लोगों के लिए ये सूचना है कि आप एकेडमी में इसके बारे में बात कर सकते हैं, और बात करके अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप उसको इस रूप में मत सोचिएगा कि इतनी जल्दी ये सब चीजें कैसे होंगी, कैसे हो पाएंगी, ये सब चीजें बड़ी आराम से हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों के जो रहने की व्यवस्था होती है वो सारी व्यवस्थाएं एकेडमी ही करती है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके लिए आपको अलग से भुगतान करना होता है। तो मित्रों, जो भी इस अक्टूबर के बैच में आना चाह रहे हैं, मैं एक मोबाइल नंबर आप सबको दे रहा हूं, आप इनसे जितनी जल्दी हो सके आप बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9754045091। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9754045091। तो मित्रों, ये एक छोटी सी सूचना थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, जो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज होता है। इसके लिए एक स्टूडेंट ने हिंदी में बड़ा प्यारा सा नाम सुझाया है, जीवन विज्ञान, लेकिन हम इसे अभी लाइफ मैनेजमेंट ही रखते हैं क्योंकि यही शब्द मैं समझता हूं कि शायद नौजवानों के मुंह पर मौजूद है, नौजवानों के लबों पर यही शब्द अक्सर खेला करता है। और सच पूछे तो मैनेजमेंट शब्द एक बड़ा एक कॉमन सा शब्द बन भी गया है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले दो दिनों से मैं दिमाग की जो मजबूती है और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहा था। जहां तक मजबूती का सवाल है, मैंने सुषमा स्वराज जी के माध्यम से दिमाग की मजबूती के बारे में बात की थी, और जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात थी वो अभी जो नोबेल प्राइज फिजिक्स में जिन साइंटिस्ट को मिला है, दो साइंटिस्ट को, उन्होंने जो बताया है कि किस तरीके से जो न्यूट्रिनो हैं वो लगातार बदलते रहते हैं और उनके ठोस के बीच में, ठोस पदार्थों के बीच में भी एक लिक्विडिटी मौजूद रहती है, उसको लेकर के मैंने चर्चा की थी। अब आज मैं उसे ही थोड़े से अलग तरीके से आगे बढ़ाना चाहूंगा ताकि हम इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं या इस सिद्धांत को अपने जीवन पर कैसे लागू कर सकते हैं, इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं उसके बारे में शायद कुछ जान सकें। फ्रेंड्स, अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, शायद पिछले सप्ताह की बात है, जो अनुपम खेर जी का जो प्रोग्राम आता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनने को मिली। वो वहीदा रहमान जी की बात थी, उस आप लोगों ने भी, मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रोग्राम देखा होगा, उसमें वहीदा रहमान जी आई हुई थी और आशा पारिक जी भी आई हुई थी। वहीदा रहमान जी अपने समय की बातें बता रही थी और उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। फ्रेंड्स, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। होता क्या है कि बहुत सी बातें कही जाती हैं लेकिन हमारे ध्यान न देने की वजह से बड़ी जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो छूट जाती हैं, और यही संकट हमारे पढ़ाई में भी होता है कि फालतू की चीजें हमारे पास मौजूद रहती हैं और जो मौजूद रहनी चाहिए वो हमारे पास से छूट चुकी होती हैं। वहीदा जी के बारे में मुझे काफी कुछ मालूम भी था, मैंने उनके बारे में काफी कुछ पढ़ा है। वहीदा जी रहमान जी के जो पिता थे वो एक सिविल सर्वेंट थे, आईएएस ऑफिसर थे, और इनका जो परिवार था वो बहुत ही प्रोग्रेसिव परिवार था। प्रोग्रेसिव मतलब बहुत ही प्रगतिशील परिवार था और बड़े ही खुले दिमाग वाला परिवार था। मित्रों, अगर आज हम जब सोचते हैं कि वहीदा रहमान जी उस समय फिल्मों में आईं और बड़े उन्होंने सफलता अर्जित की तो हमें शायद बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन मैं तो उस दौर का साक्षी रहा हूं। उस दौर में किसी लड़की का फिल्मों में आना एक तो यही बहुत बड़ी बात थी, और इससे भी बड़ी बात किसी मुस्लिम लड़की का आ जाना था। यह बहुत बड़ी बात थी और बहुत ही क्रांतिकारी बात थी। हमको सामान्य सी बात लग सकती है आज अगर हम सोचेंगे तो, उस समय यह सामान्य सी बात नहीं थी क्योंकि उस समय का जो समाज था उनको जवाब देना मुश्किल होता था कि आपकी लड़की और फिल्मों में काम कर रही है, आपकी लड़की और स्टेज पर प्रोग्राम दे रही है, और खासकर अगर वो डांस का क्षेत्र है तो। मतलब वो समझ लीजिए कि समाज का दिमाग कुछ ऐसा था कि ये सब काम करना मतलब चरित्रहीनता का प्रमाण है, आप किसी काम के नहीं रह गए, शादी होनी मुश्किल होगी, समाज में सम्मान प्राप्त करना मुश्किल होगा, और जीवन समझ लीजिए कि इसी तरह से जलील हो जाएगा। ये उस समय का समाज था। आप कल्पना करके देख सकते हैं कि ऐसे समय में, ऐसे समाज के अंदर रहते हुए अगर वहीदा रहमान जी के पिता ने उनको सपोर्ट किया तो ये कितनी बड़ी बात रही होगी। वहीदा जी ने अनुपम खेर जी से बातचीत करते हुए ये बताया, बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि हमारा जो परिवार था वो बड़ा लिबरल ओपिनियन का परिवार था। दोस्तों, बस इसी शब्द को पकड़ लीजिए, लिबरल विचारों का परिवार था, बहुत ही उदार उसके विचार थे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे जो फादर थे, जो पिता थे, वो कहा करते थे कि देखिए कोई हुनर खराब नहीं होता है, मैं उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूं, कोई हुनर खराब नहीं होता है, लोग खराब होते हैं जो उस हुनर से जुड़े हुए, अगर वो खराब हैं तो। इसका मतलब है कि व्यक्ति खराब हो सकता है, कला खराब नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, ये जो मैं लिबरल माइंड की जो बात कर रहा हूं, लिबरल ओपिनियन, लिबरल थॉट्स की जो मैं बात कर रहा हूं, यही फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड है। और आप अपने आसपास के लोगों को वाच कीजिए, जब आप इतिहास पढ़ते हैं या लोगों की जब आप बायोग्राफीज पढ़ते हैं, तो उसमें जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि जो लोग जिंदगी की बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, वो कौन लोग थे, जिन्होंने नए काम किए हैं वो कौन लोग थे, या एक जो साइंटिस्ट होता है जो इन्वेंशन करता है, एक राइटर होता है जो बड़ी एक नई चीज लिखता है, एक कलाकार होता है जो अद्भुत चीजों की रचना करता है, वो कौन होता है, उसकी मानसिक संरचना क्या होती है, उसका जो ब्रेन है, जो सोचने समझने का जो उसकी थॉट प्रोसेस है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका फैब्रिकेशन क्या है। दोस्तों, आपको एक जवाब मिलेगा और वो जवाब ये होगा कि उसकी जो सोच थी, उसके जो विचार थे, वो बहुत लिबरल थे, बहुत उदार थे, बहुत लचीले थे। हर जगह आपको ये जवाब मिलेगा, क्योंकि उस लचीलेपन के बिना, उसके अभाव में, लचीलेपन के अभाव में हम ये सोच ही नहीं सकते कि हमारे दिमाग में कोई बहुत बड़ी रचनात्मक क्षमता पैदा हो सकेगी, संभव नहीं है। मॉडर्न लाइफ में आप देख लीजिए, मैं आपको दो उदाहरण अभी के देता हूं। प्रियंका चोपड़ा जी के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं, और अभी खासकर वो तो हॉलीवुड की जो स्टार बन गई हैं, वो अद्भुत सफलता है, मतलब वो इंटरनेशनल फेम की अब आर्टिस्ट बन चुकी हैं, अभी जो उन्होंने हॉलीवुड के एक सीरियल में जो काम किया है उसके बाद। अब इनकी पृष्ठभूमि पर जाइए, है ना, वो छोटी मोटी पृष्ठभूमि है कि 3 साल गई, वो बॉस्टन में पढ़ी, या उनके फादर एक आर्मी में डॉक्टर थे, फलाने फलाने थे, मां ये थी, और रायबरेली के आर्मी स्कूल में पढ़ी, फलाना, वो छोटी चीजें हैं। सफलता वहां से नहीं आती है, वो तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सफलता आती है कि उनका परिवार कैसा था। अगर परिवार कैसा था तो फिर आप उसको धन से मत जोड़िए, पढ़ाई से मत जोड़िए, प्रोफेशन से मत जोड़िए, उसकी सोच कैसी थी। परिवार कैसा था का मतलब है कि सोच कैसी थी। वो आर्मी फैमिली से हैं तो डेफिनेटली उनके परिवार की जो सोच थी वो उसी तरह की लिबरल सोच है जिस तरह की लिबरल सोच वहीदा रहमान जी के पिता की थी। लेकिन मित्रों, आप यहां ये बात कह सकते हैं कि ठीक है, उनका परिवार है और उनके परिवार की सोच लिबरल थी, लेकिन मेरा परिवार है, मेरे परिवार की तो सोच लिबरल नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मित्रों, में एक और आपको उदाहरण दूंगा, वो कंगना रनौत का उदाहरण है। कंगना रनौत के बारे में आप जानते होंगे, और खासकर मुझे लगता है कि सर 6 महीने 8 महीने पहले जो आहा जिंदगी का जो अंक आया था, उसमें बहुत लंबा इंटरव्यू कंगना रनौत का, जब उनकी क्वीन फिल्म बहुत सुपरहिट हुई थी। इनका परिवार उतने लिबरल विचारों का नहीं है, लेकिन कंगना रनौत ने क्या किया, कंगना रनौत ने, मैं कहना चाहूंगा कि एक तरह से अपने परिवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने का, कैसे विद्रोह किया, स्वाभाविक है कि उनकी अपनी सोच, कंगना रनौत की अपनी सोच लिबरल है। अब हमारे पास दो उपाय बचते हैं, या तो हम अपने परिवार की सोच को लिबरल करते हैं, या फिर इस तरह के अगर काम करने हो तो हम विद्रोह करते हैं। मित्रों, मैं एक बहुत स्पष्ट रूप से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप खासकर जिस क्षेत्र में हैं, जाना चाह रहे हैं, वहां किसी तरह के कोई विद्रोह की जरूरत नहीं है, रत्ती भर भी विद्रोह की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। आप ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे हैं जिसके लिए आपके पेरेंट्स को समाज में जवाब देना होगा, बल्कि अगर आप अपने काम में सफलता हासिल कर लेंगे तो आपके पेरेंट्स की प्रतिष्ठा समाज में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यहां विद्रोह की बात नहीं है, यहां मैं केवल लिबरल माइंड जो कर सकता है उसकी मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, ये जो लिबरल जो माइंड होता है, ये लिबरल माइंड ही सच पूछे तो दुनिया के लिए हमारे दिमाग की खिड़कियों को खोलता है, तभी उसमें नई हवा आती है, नई रोशनी आती है, और तभी फिर हमारे दिमाग का कमरा तरोताजा रहता है। अदरवाइज मालूम है कि कमरे को बंद कर दीजिए, खिड़कियों को बंद कर दीजिए, और ज्यादा समय नहीं, महीने भर बाद खोल करके देख लीजिए, कमरे से सड़ांध आ रही होगी, जगह जगह जाले लगे हुए होंगे, और यहां तक कि जब आप दरवाजे भी खोलेंगे तो जो इतने सॉफ्ट तरीके से खुलते थे, चिड़मिर चिड़मिर की आवाज कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो प्रकृति का नियम है, ये हमारे ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हम भी प्रकृति के ही हिस्से हैं, प्रकृति हमसे कोई भेदभाव नहीं करती। तो मेरा आप लोगों से जो अर्ज है, मेरी जो अर्ज है, जो अनुरोध है दोस्तों, जो राय है, सलाह है, एडवाइस है, जो भी आप कहना चाहें, वो ये कि प्लीज अपने दिमाग पर काम कीजिए, उसको लिबरल बनाइए, उसको खुलापन का माहौल दीजिए। दिमाग हमारा पक्षी की तरह है, पिंजड़े में भले ही हमको वो खूबसूरत लगता हो, लेकिन वो पक्षी बहुत छटपटाता है, क्योंकि उसकी आंखें खुले आसमान को देख रही होती हैं। पक्षी तो खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए प्रकृति ने बनाए हैं, पिंजड़ों में कैद करने के लिए नहीं। अपने दिमाग को पिंजड़ों में कैद बिल्कुल मत कीजिए, लिबरल थॉट्स रखिए, जहां पूरी दुनिया के लिए जगह हो, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर विचार के लिए, हर स्थान के लिए, हर युग के लिए जगह है। हां, आप अपने ढंग से, लॉजिकल तरीके से, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ, जो आपको अपने लिए जरूरी लगता है, उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन दूसरों को नकारिए मत, क्योंकि जिसे हम नकारते हैं वो दूसरों को भी जरूरी लगता है। कोई ना कोई तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, किसी न किसी की धरोहर, किसी न किसी की विरासत तो वो भी है। और सीधी सी बात है कि जब आप और हम दूसरों को गले लगाएंगे तो दूसरे भी हमें गले लगाएंगे, जब हम अकड़ेंगे तो दूसरे भी अकड़ेंगे। मैं दिमाग की बात कर रहा हूं, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हमारे दिमाग में अकड़ होगी तो सीधी सी बात है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हमारे दिमाग में संवेदनशीलता होगी, लचीलापन होगा, तो वो लपक लेगा, चीजों को लपक लेगा। तो मित्रों, ये मैंने थोड़ी सी बातें आप लोगों के से शेयर की हैं, और खासकर इसलिए क्योंकि आप सब अभी एक निर्माण के प्रोसेस से हैं, आप सब अभी बनने के दौर से गुजर रहे हैं, और इसलिए भी मित्रों कि कुछ ही दिनों के बाद आप सब यहां भोपाल में क्लास में मेरे सामने होंगे, और आप सब एक उद्देश्य लेकर आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा, बहुत ही पवित्र उद्देश्य लेकर आ रहे हैं। आपकी आंखों में सिर्फ आपकी ही जिंदगी के सपने नहीं हैं, आपके पेरेंट्स के भी सपने हैं, आपको उन्हें पूरा करना है। और ये मानकर चलिए कि उन सपनों को आप सिर्फ 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 पढ़ाई और मेहनत से पूरा नहीं कर सकते, उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा वो क्वालिटी ऑफ माइंड का कंट्रीब्यूशन होगा। नो डाउट कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन पढ़ाई और मेहनत जिस पात्र में आप करेंगे, जिस थैले में करेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए करेंगे, वो तो इंस्ट्रूमेंट हमारा दिमाग है। अगर वही इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है तो फिर हमारी पढ़ाई और हमारी मेहनत रहेगी कहां, उसको ग्रहण कौन करेगा, वो किस तरह से हमारी मदद कर सकेगी। तो मित्रों, इसलिए मैंने ये बात कही है, और इस बात, इस सब्जेक्ट को मैंने आज इसलिए भी चुना कि वो सीधे सीधे आपके एआईआर न्यूज से जुड़ जाए। तो मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट के इस चरण के बाद अब मैं एआईआर न्यूज पर आता हूं। आप लोगों ने एआईआर न्यूज सुनी, अब मैंने अभी जो आप लोगों से बात की है, आप सीधे ही सीधे ऑल इंडिया रेडियो की जो पहली खबर है उससे इसको जोड़ दीजिए। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि ये एक कम बड़ी बात नहीं है कि राष्ट्रपति जी ने एक पुस्तक का विमोचन करते हुए, मतलब एक बहुत बड़ी घटना नहीं है पुस्तक का विमोचन करना, करते हुए भारतीय समाज में सहिष्णुता की बात कही कि जो भारतीय समाज है वो बेसिकली सहिष्णु समाज है और उस सहिष्णुता को हमें बनाए रखना, ये बात कही, राइट। और फिर देखिए कि उस बात को हमारे ऑल इंडिया रेडियो ने अपने न्यूज में सबसे बड़ा स्थान दिया, सबसे अधिक स्थान दिया और प्रथम स्थान दिया, फर्स्ट प्लेस, मतलब प्रायोरिटी में कल की न्यूज में यह न्यूज टॉप पर रही। इससे आप जरूरत महसूस कर सकते हैं। सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि हमारे जो भी जिम्मेदार लीडर्स हैं वो ये बात कहते हैं। राष्ट्रपति जी ने यह बात पहली बार नहीं कही है, इससे पहले भी वो कई बार इस बात को कह चुके होंगे। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हमारे गृहमंत्री जी का रोज स्टेटमेंट आ रहा है, वो लगातार कह रहे हैं। तो राष्ट्रपति जी की इस बात को फर्स्ट प्लेस पर न्यूज के रूप में लिया जाना और उसे इतना स्पेस देना अपने आप में सिद्ध कर रहा है कि इस न्यूज की महत्ता या इस टॉपिक की महत्ता, आप कह लीजिए, वर्तमान समय में थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। और थोड़ी सी ज्यादा क्यों हो गई है फ्रेंड्स, इसके लिए कल मैंने बहुत विस्तार से आप लोगों से चर्चा की थी। मैंने बताया था
कि नयनतारा सहगल जी ने अपने एकेडमी अवार्ड लौटा दिया है। जो माहौल बन रहा है देश में, जो लोगों को दिखाई दे रहा है, कहीं दादरी कांड हो रहे हैं, कहीं पर गौ मांस की बिक्री को लेकर के जुडिशियली और इस तरह के आपस में वो चल रहे हैं, न्यायिक प्रक्रियाएं जारी हैं, कहीं साहित्यकारों की जैसे कलबुर्गी जी की हत्या हो गई, तो ये सारी चीजों से जो एक वातावरण शैला सा वातावरण बनता जा रहा है, लोगों का ये मानना है। और आपने आज के अखबारों में पढ़ा होगा कि अशोक वाजपेयी जो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, हैं मतलब थे, अब तो रिटायर हो गए हैं, वो दिल्ली में रहते हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, हिंदी के एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित साहित्यकारों में आते हैं, उन्होंने भी अपना एकेडमी अवार्ड इसी बात को लेकर लौटा दिया। अशोक वाजपेयी जी का नाम आते ही मुझे मित्रों अपने छत्तीसगढ़ में, जब मैं सरगुजा जिले में था तो उस समय अशोक वाजपेयी वहां के कलेक्टर हुआ करते थे और मैं उन्हें इसलिए बहुत विशेष रूप से मानता हूं क्योंकि मुझे आईएएस बनना है, इस परीक्षा में बैठना है, कुछ करना है, मुझे प्रेरणा उन्हीं से ही मिली थी। उन्होंने भी अपना एकेडमी अवार्ड लौटा दिया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे 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 चीजें बढ़ती जा रही हैं। फ्रेंड्स, इसको लेकर के मैं एक दो चीजें आप लोगों से आज और ऐड करना चाहूंगा क्योंकि ये टॉपिक फिलहाल मुझे लगता है कि एसए के लिए और यहां तक कि अगर फर्स्ट पेपर में सोशियोलॉजी के अंतर्गत, जो सोशियोलॉजी का जो सेक्शन होता है उसके अंतर्गत भी जनरल स्टडीज में पूछ लिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का तो एक बहुत बड़ा एक अनिवार्य हिस्सा ये होता ही जा रहा है। फ्रेंड्स, एक दो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि नंबर एक कि आपने न्यूज में सुना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दादरी कांड जो भी हुआ है उसकी रिपोर्ट भेज दी है। हम लोग रिपोर्ट पर नहीं जाते, हम तो केवल सिविल सर्विस के पॉइंट से इस चीज को देखेंगे। अब हमारे दिमाग में यह सवाल उठना चाहिए कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर है, किसी भी राज्य में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति होती है ये किसके अंतर्गत आता है? हमारे है ना केंद्रीय सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, तो ये किसका विषय है? तो आपको मिलेगा कि ये राज्य सूची का विषय है, यानी कि किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, लोग सुरक्षित जीवन जिए, शांतिपूर्ण जीवन जिए, ये दायित्व तो राज्यों का है, सीधी सी बात है। तो राज्य इससे निपटे, तो फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या केंद्र राज्यों पर हस्तक्षेप कर रहा है? और अगर केंद्र राज्यों के इन सब मामलों में, कानून और व्यवस्था के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो ये फिर से एक तरीके से जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है उसका अतिक्रमण है। और सीधी सी बात है कि जो सीधे सीधे विषयों का विभाजन किया गया है, तो वो विषयों के विभाजन का फिर अर्थ क्या हुआ? फिर तो केंद्र किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, ये दिमाग में बात आनी चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और जो जनरल स्टडीज में आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं उसका रंग रूप कुछ इसी तरह का होने लगा है। और मजेदार बात है कि जब आप ऊपर से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बड़ा कठिन सा, बड़ा अटपटा सा और ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमने सुना नहीं, हमने सोचा नहीं, लेकिन जरा सा भी अगर आप उस पर सोचेंगे तो आपको प्रश्न बड़ा प्यारा, बड़ा सरल लगने लगेगा और बड़े आराम से आप लिख लेंगे। चलिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एक प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन के हम दूसरे प्रोविजन पे आते हैं और वो चले जाइए आप आपातकालन की स्थिति पर कि राष्ट्रपति किस देश में या किसी भी राज्य में किन किन के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं, इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, उसी को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। उसमें आपको मालूम है एक बहुत बड़ा कारण होता है कानून और व्यवस्था की स्थिति। यदि सरकार को, केंद्र सरकार को यह लगता है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति सही नहीं चल रही है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और ये तभी संभव है जब राज्यपाल इस बात की सिफारिश करे कि राज्य सरकार संवैधानिक तरीके से कानून और व्यवस्था की स्थिति को मेंटेन करने में असफल है, वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, राइट? अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको सीधे सीधे इस बात समझ में आ जाएगी कि राज्य सूची में ये कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात होते हुए भी कैसे केंद्र सरकार को उस पर अपना लगातार निगरानी उस पर रखनी पड़ती है। और वैसे भी एक संघात्मक ढांचा भले ही हो लेकिन केंद्र सरकार को यह अधिकार होता है कि वो राज्यों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सूचना मांग सकती है, क्योंकि देश का सवाल है, राज्य का सवाल नहीं है। तो मित्रों, इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेजी गई, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि देश यानी कि केंद्र सरकार ये समझ रहा है कि ये जो मामला है ये सामान्य कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि ये और आगे बढ़े और देश एक प्रकार के सांप्रदायिक तनाव या कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति की चपेट में आ जाए। और अगर ऐसा आएगा तो फिर आप कल्पना करके देखिए कि देश के लोगों का क्या होगा, क्योंकि ये सवाल दादरी का नहीं है, ये सवाल कोई दो संप्रदायों का भी नहीं है, ये सवाल पूरे देश का है। और आपने इसी के साथ ही अखबारों में ये भी पढ़ा होगा कि हमारे वित्त मंत्री जो अभी फॉरेन में हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि इससे देश की छवि खराब होती है, हमारी इंटरनेशनल जो इमेज है, वर्ल्ड इमेज जो है वो खराब होती है। और आप सोच करके देखिए कि अगर इस तरह की घटनाएं होती रही, आगे भी होती रही, या उनके मन में, विदेशियों के मन में ये बात आ गई कि वहां तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम चलती रहती है, तो आपको क्या लगता है कि विदेशी भारत में निवेश करना चाहेंगे? क्या विदेश के लोग भारत में आकर के मेक इन इंडिया के पॉइंट से मैन्युफैक्चर्स करना चाहेंगे, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे? सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरीके से मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक घटना छोटी सी है, छोटी सी मतलब घटना उस तरह से छोटी सी नहीं, न्यूज में ये बात है और आप देखेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, क्योंकि लगता है कि सांप्रदायिक तनाव होते रहते हैं, इससे पहले भी हुए हैं, छुटपुट छुटपुट और भी होते रहते हैं। लेकिन जब आप इसकी गंभीरता पर विचार करेंगे तब आपको पता लगेगा कि नहीं, ये एक छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। तो मित्रों, जो सिविल सर्विस की जो तैयारी करने का जो हमारा पैटर्न होता है वो लगभग लगभग इसी तरह का विचारपूर्ण पैटर्न होता है, थॉटफुल पैटर्न, यानी कि आप छोटी चीज को एक विस्तार के साथ देखते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि लगभग दो दिन पहले मेरे पास एक मेल आया था और उस मेल में एक स्टूडेंट ने पूछा था, जैसे अभी तलवार फिल्म रिलीज हुई है, मैं कभी इसके बारे में आपसे बात करूंगा क्योंकि मैं तलवार फिल्म मैंने परसों देख ली, हम लोगों ने देखी है, उसके बारे में उन्होंने पूछा कि सर क्या हमें सिविल सर्विस की दृष्टि से इस तलवार फिल्म को देखना चाहिए। मित्रों, मैं आपको सिविल सर्विस के पॉइंट से बताना चाहूंगा, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के पैटर्न के हिसाब से बताना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हैं। तलवार फिल्म से कोई सीधे सीधे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप तलवार ही क्या, किसी भी फिल्म से हो सकता है कि आपको ऐसे कंटेंट मिल जाएं जिसका इस्तेमाल आप अपने उत्तरों में कर सके, चाहे वो जनरल स्टडीज का आंसर हो, चाहे वो आपके ऐसे राइटिंग का पेपर हो, और यहां तक कि ह्यूमैनिटी के जो ऑप्शनल पेपर्स के सब्जेक्ट हैं, चाहे वे ही क्यों न हो, सवाल आपके ऊपर है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। लेकिन आपका जो इस्तेमाल होना चाहिए वो बहुत सटीक होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसमें जोड़ दिखाई नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इस सिविल सर्विस के लिए आप अपने दिमाग को एनलार्ज कीजिए, जो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, क्या जरूरी, कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं जिसको लेकर के हम लोग इस ऑडियो गाइडेंस में चर्चा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप मिस नहीं कर सकते, है ना, इनको आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन दूसरा, आप उसको कहां तक फैला सकते हैं ये आपकी अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, और जिसके दिमाग में जितना ज्यादा, जिसका दिमाग खुलापन खुला हुआ होगा, लिबरल होगा, फ्लेक्सिबल होगा, उसकी ग्रहण शक्ति उतनी अधिक होगी, और जिसकी ग्रहण शक्ति जितनी अधिक होगी स्वाभाविक है कि उसका एक्सप्रेशन भी उतना ही अच्छा होगा, बेहतर होगा। यह दिमाग का एक प्रक्रिया है, दिमाग का अपना एक विज्ञान है, इस विज्ञान को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं दूसरी खबर पर, जो आधार कार्ड से जुड़ी हुई खबर थी, और इस पर मैं आज आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि आधार कार्ड को लेकर के लगातार एक बहस का दौर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक संविधान पीठ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो इस मामले को देख रही है। इससे पहले कि अगर आप दो साल के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखेंगे जनरल स्टडीज के, तो आधार कार्ड को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि इस बार भी पूछा जाएगा, उसको रिपीट करेंगे, क्योंकि अगर हम उस समय से अभी तक का लेकर के चले तो आधार कार्ड के मामले में कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की रिक्वेस्ट को मानते हुए, आधे अधूरे तरीके से मानते हुए, कम से कम एक बात तो इतनी कर दी है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो राशन कार्ड के तहत जो अनाज मिलता है और केरोसिन ऑयल मिलता है और खासकर रसोई गैस की जो सब्सिडी है, इन दो के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। कि यह अनिवार्य नहीं है कि हर नागरिक के पास ये हो ही। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो याचिका दायर की गई थी आधार कार्ड के विरोध में, वो थे कि ये हमारे निजता का अधिकार का उल्लंघन करता है, हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है, क्योंकि आधार कार्ड में हम अपनी सारी जानकारियां हमारा पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास होता है और कोई भी इस डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारे निजता का जो अधिकार है, जो प्राइवेसी के जो राइट है, वो कहीं ना कहीं उल्लंघित होता है। इसको अभी सुप्रीम कोर्ट लेकर के चल रहा है, तो इसीलिए इसमें दो में तो अनिवार्य कर दिया उन्होंने, पीडीएस में और रसोई गैस सब्सिडी में, बाकी के लिए अभी उसकी अनिवार्यता को निरस्त कर दिया है। मामला संविधान पीठ के पास है, देखते हैं कि वो पीठ अपना क्या निर्णय देती है। इसकी कंटिन्यूटी को, इस टॉपिक की कंटिन्यूटी को आपको लगातार ध्यान में रखना है और बनाए रखना है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक और जो छोटी सी खबर थी वो ये थी कि रेलवे में राजपत्रित अधिकारियों के बारे में एक बात हुई थी कि जो गैर राजपत्रित अधिकारी हैं उनको अभी बोनस मिलेगा। राजपत्रित अधिकारी और गैर राजपत्रित अधिकारी के बारे में आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं, हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट न जानते हों। एक सरकार एक गजट प्रकाशित करती है जिसको राजपत्र कहते हैं, तो एक लेवल के बाद, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जितने भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनका नाम उस गजट में प्रकाशित किया जाता है, तो राजपत्रित अधिकारी हो जाते हैं। नो डाउट ये क्लास वन ऑफिसर होते हैं, क्लास टू क्लास वन ऑफिसर होते हैं, और जो फिर बाकी जो नीचे के जो लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं वो गजटेड ऑफिसर नहीं होते। तो ये बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है, आप सब जो सिविल सर्विस के थ्रू आएंगे सब के सब गजटेड ऑफिसर होंगे, राजपत्रित अधिकारी होंगे। स्टेट सिविल सर्विस के थ्रू भी जो आते हैं ज्यादातर वो गजटेड ऑफिसर्स होते हैं, है ना, ज्यादातर जो ऑफिसर्स होते हैं वो गजटेड ऑफिसर्स होते हैं। मित्रों, सरकार ने एक और जो बात कही है जो काफी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने राज्य सरकारों को पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो निचले स्तर की जो भर्तियां होती हैं उसमें इंटरव्यू के पैटर्न को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत घपले होते हैं, सब्जेक्टिव हो जाता है बोर्ड, या कह लीजिए कि और दूसरा देख रहे हैं आप दुनिया भर के स्कैम सब चल रहे हैं, तो जो जोर दिया जाना चाहिए वो स्किल डेवलपमेंट को दिया जाना चाहिए कि उनमें वास्तव में स्किल कितने वो स्किल्ड हैं, कैपेसिटी क्या है, उसी के आधार पर भर्ती की जानी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पहले इस बात की घोषणा की थी कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो चूंकि अब ये जो भर्ती का मामला है ये राज्य सरकारों का अपना विषय है ना, आपने देखा है कि स्टेट सिविल सर्विस की भी जो भर्ती है उनके अपने आयोग करते हैं, केंद्र सरकार नहीं करती उनकी, तो उस ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों से सिर्फ अनुरोध कर सकती है। अब ये राज्यों के ऊपर होगा कि वो उसे कैसे लेती है और कितना स्वीकार कर पाती है। मित्रों, रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज के बारे में भी एक खबर थी, डीएनए में सुधार के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आ रहे हैं, लगातार तीन नोबेल प्राइज आ चुके हैं, मेडिसिन का हो चुका है, फिजिक्स का हो चुका है और केमिस्ट्री का हो चुका है, तीन अभी और बाकी हैं, एक लिटरेचर का होगा, एक पीस का होगा और एक इकोनॉमिक्स का होगा। तो लिटरेचर, पीस और जो इकोनॉमिक्स के होते हैं वो जनरल स्टडीज के पॉइंट से थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक कॉमन हो जाता है, और साइंस का जो सब्जेक्ट होता है चूंकि एक थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, तो इसलिए जनरली अगर साइंस का बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट रहा है जिनको नोबेल प्राइज मिला है तो उनको उसके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अदरवाइज ज्यादातर इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और जो शांति के बारे में जिनको मिलता है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं न्यूज आइटम पर, और न्यूज आइटम के बारे में मैं अभी आप लोगों से विशेष चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि समय इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है। क्लिपिंग्स नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल हैं, वो आप लोग देख लेंगे। एक क्लिपिंग्स के बारे में मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो इकोनॉमिक टाइम्स की क्लिपिंग्स है और बेसिकली एडिटोरियल कमेंट है, ये बहुत ही छोटा सा एडिटोरियल कमेंट है लेकिन बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट्स है। मित्रों, कल मैंने आपको ध्यान होगा चर्चा की थी कि गन्ने के जो किसान हैं वो किस तरह के से त्रस्त हैं, इसमें उन्होंने कई तरह के किसानों के बारे में चर्चा की है, चाहे वो गन्ने का उत्पादन करने वाले किसान हो, चाहे वो तंबाकू का उत्पादन करने वाले किसान हो, चाहे फिर कॉटन कपास का उत्पादन करने वाले किसान हो, तो उनको लेकर के उन्होंने लिखा है कि इनके लिए क्या किया जाना चाहिए, सरकार किस तरह की नीतियां बनाए ताकि इनके सामने इस तरह के संकट बार बार ना आए। तो मित्रों, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसको आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ नई अंतर्दृष्टि मिलेगी, नए विचार मिलेंगे जो आप अपनी परीक्षा में यूज कर सकेंगे। फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं ईमेल पर। दोस्तों, मेरे पास तीन मेल आए हैं, जो ये मेल उनके हैं जो स्टूडेंट अभी अक्टूबर की क्लास में आ रहे हैं। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है ताकि मैं उन अनाउंस कर सकूं। मैं बताना चाहूंगा कि प्लीज जब भी आप इस तरह का मेल लिखें तो आप अपना मोबाइल नंबर तो लिखते ही हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखते हैं। जब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, अपना स्थान कहां से आप आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे, तब तक उसे शामिल करना हम लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि मैं तीन स्टूडेंट्स में से दो के नाम शामिल नहीं कर पा रहा हूं। केवल एक ही स्टूडेंट ने ये सारी शर्तें पूरी की हैं। इनका नाम है नवीन दुबे, ये दिल्ली से आ रहे हैं और इन्होंने कहा है कि जो भी स्टूडेंट वहां से आ रहा हो उनसे कांटेक्ट कर सकता है। तो नवीन दुबे का जो मोबाइल नंबर है मित्रों, वो आप नोट कर सकते हैं, 8447948683, ये उनका नंबर है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार जिन्होंने मेल लिखे हैं, और इन्हीं में से कुछ के नाम हैं: भूपेंद्र कुमार मालव कोटा से, उत्कर्ष दीप पटना से, पंकज शर्मा जयपुर से, पारुल सिंह और रजत बोलपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अभिवादन के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।